नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स अरुंधति रॉय की गैर कथा पुस्तक है, जो मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादी आंदोलन के साथ उनके प्रत्यक्ष अनुभवों और राजनीतिक टिप्पणियों को जोड़ती है। यह पुस्तक वर्ष 2010 में नक्सली माओवादी गुरिल्लाओं, आदिवासी समुदायों और संघर्षग्रस्त इलाकों के बीच बिताए समय पर आधारित है। रॉय का उद्देश्य केवल एक गुप्त सशस्त्र आंदोलन का वृत्तांत देना नहीं है, वे उस व्यापक टकराव को समझना चाहती हैं, जिसमें राज्य की सुरक्षा नीति, खनन आधारित विकास, भूमि अधिकार, आदिवासी विस्थापन और सामाजिक असमानता एक दूसरे से जुड़े हैं। पुस्तक का केंद्र ऑपरेशन ग्रीन हंट पर उनकी तीखी आलोचना है, जिसे वे संसाधन समृद्ध वन क्षेत्रों पर कॉरपोरेट पहुंच बनाने की प्रक्रिया से संबद्ध मानती है। साथ ही इसमें माओवादी हिंसा, आंदोलन के भीतर पितृसत्तात्मक सीमाएं और लेखक की अपनी पक्षधरता जैसे कठिन प्रश्न भी मौजूद हैं। इसलिए इसे निष्पक्ष अंतिम इतिहास के बजाय एक प्रभावशाली प्रत्यक्षदर्शी और स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण वाली रिपोर्टाज के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ऑपरेशन ग्रीन हंट को सुरक्षा अभियान नहीं, संसाधनों के संघर्ष के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे केंद्रीय तर्क यह है कि मध्य भारत में राज्य और माओवादी संगठनों का संघर्ष केवल कानून व्यवस्था या उग्रवाद का प्रश्न नहीं है। रॉय के अनुसार छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों के जंगल, खनिज और जल संसाधन इस संघर्ष की वास्तविक पृष्ठभूमि बनाते हैं। वे ऑपरेशन ग्रीन हंट को ऐसी सैन्य और पुलिस कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका प्रभाव आदिवासी आबादी को उनके पारंपरिक भूभाग से हटाने और खनन परियोजनाओं के लिए क्षेत्र खोलने में पड़ता है। यह दृष्टि विकास की उस भाषा पर सवाल उठाती है, जिसमें खनिज दोहन, उद्योग और वृद्धि को राष्ट्रीय हित कहा जाता है, जबकि स्थानीय समुदायों की सहमति, आजीविका और सांस्कृतिक संबंध पीछे छूट जाते हैं। रॉय का तर्क कारण और परिणाम की एक श्रृंखला बनाता है। पहले भूमि और वन पर बाहरी दावे बढ़ते हैं, फिर विरोध को सुरक्षा चुनौती कहा जाता है, और अंततः सुरक्षा उपायों का बोझ उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनकी जमीन दांव पर है। पुस्तक इस दावे को सरकारी नीति का निर्विवाद प्रमाण नहीं मानती, बल्कि उसका आलोचनात्मक प्रतिवाद सामने रखती है। पाठक के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों को आर्थिक हितों और भूमि अधिकारों से अलग करके नहीं समझा जा सकता। दूसरा, आदिवासी जीवन, भूमि और जंगल के संबंध को राजनीतिक केंद्र में रखना। रॉय की रिपोर्टाज में आदिवासी समुदाय किसी दूरस्थ संघर्ष के निष्क्रिय पीड़ित नहीं है। वे जंगल, खेती, भोजन, स्मृति और सामुदायिक जीवन के साथ उनके संबंध को इस विवाद की आधारभूत वास्तविकता के रूप में रखती हैं। पुस्तक बताती है कि भूमि का नुकसान केवल घर या आय का नुकसान नहीं होता, इससे स्थानीय ज्ञान, सामाजिक रिश्ते, धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाएं और स्वायत्त जीवन पद्धति भी प्रभावित होती है। इसीलिए विकास परियोजनाओं, वन नियंत्रण और विस्थापन की चर्चा को केवल मुआवजे या रोजगार के आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता। रॉय का लेखन उन आवाजों को सार्वजनिक बहस में स्थान देता है जो सामान्यतः सरकारी घोषणाओं, कॉरपोरेट योजनाओं और शहरी मीडिया की भाषा में दब जाती है। फिर भी इस प्रस्तुति को सावधानी से पढ़ना चाहिए। आदिवासी समुदाय एक रूप नहीं है, और हर व्यक्ति माओवादी राजनीति या सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थक हो, ऐसा निष्कर्ष पुस्तक से भी आवश्यक रूप से नहीं निकलता। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह पाठक को विकास के लाभ और लागत पूछने के लिए बाध्य करती है। किसकी जमीन ली जा रही है, निर्णय में किसकी सहमति है और लाभ किसके पास जाएगा, ये प्रश्न पुस्तक के नैतिक और राजनीतिक ढांचे को आकार देते हैं। तीसरा, माओवादियों के निकट से चित्रण और सशस्त्र प्रतिरोध की नैतिक दुविधा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स की विशिष्टता यह है कि रॉय ने माओवादी गुरिल्लाओं के साथ जंगल में रहकर उनके दैनिक जीवन, संगठन और बातचीत को देखा। इससे पाठक को उस आंदोलन का मानवीय और भौतिक पक्ष दिखाई देता है, जिसे अक्सर केवल सुरक्षा संबंधी समाचारों में एक अमूर्त खतरे के रूप में दिखाया जाता है। वे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सशस्त्र सदस्यों, उनके अनुशासन और उनके राजनीतिक औचित्य की भाषा दर्ज करती हैं। आंदोलन अपने को आदिवासी लोगों की रक्षा और शोषण के प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यही निकटता पुस्तक की सबसे बड़ी आलोचनात्मक चुनौती भी है। माओवादी हिंसा को राज्य हिंसा के संदर्भ में समझाना और उसे नैतिक रूप से उचित ठहराना दो अलग बातें हैं। रॉय राज्य बलों, पुलिस और सतर्कतावादी समूहों पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोपों को प्रमुखता देती हैं, पर आलोचकों ने कहा कि माओवादी हिंसा की जांच में उनका रुख कम कठोर प्रतीत हो सकता है। पुस्तक इसलिए आसान पक्ष चयन नहीं देती, भले उसकी सहानुभूति स्पष्ट है। यह पाठक से मांग करती है कि वह हिंसा की परिस्थितियों, उसके लक्ष्यों और उसके परिणामों तीनों को साथ रखकर सोचे। प्रत्यक्ष पहुंच इसकी शक्ति है और दृष्टिकोण की पक्षधरता इसकी सीमा। चौथा, महिलाओं की भागीदारी और क्रांतिकारी संगठन के भीतर पितृसत्ता का विरोधाभास। पुस्तक में रॉय को सबसे उल्लेखनीय बातों में से एक यह लगती है कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी थी। वे लिखती हैं कि अनेक महिलाएं गांवों पर हमलों, हिंसा और असुरक्षा के अनुभवों के बाद आंदोलन से जुड़ी। यह अवलोकन संघर्ष को केवल पुरुष सैनिकों और हथियारों की कहानी मानने से रोकता है। महिलाओं की मौजूदगी से यह भी समझ आता है कि विस्थापन, राज्य दमन और स्थानीय हिंसा के प्रभाव घरों और परिवारों के भीतर किस तरह पहुंचते हैं। फिर भी रॉय आंदोलन को लैंगिक समानता का आदर्श उदाहरण नहीं बताती। वे माओवादी संगठनों में पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियों के बने रहने की ओर संकेत करती हैं। यही विरोधाभास महत्वपूर्ण है। किसी संगठन में महिलाओं की संख्या अधिक होना अपने आप निर्णय लेने की शक्ति, सुरक्षा, सम्मान या समान नेतृत्व की गारंटी नहीं देता। पुस्तक का यह हिस्सा व्यापक राजनीतिक आंदोलनों के मूल्यांकन का उपयोगी तरीका देता है। उनके घोषणा पत्रों के साथ यह भी देखना चाहिए कि रोजमर्रा के संबंधों, नेतृत्व संरचनाओं और लैंगिक भूमिकाओं में क्या बदलता है। रॉय महिलाओं को केवल पीड़ा के प्रतीक के रूप में नहीं रखती, बल्कि उन्हें राजनीतिक निर्णय लेने वाली सहभागी के रूप में दिखाती हैं। साथ ही वे यह चेतावनी भी देती हैं कि क्रांति की भाषा पुराने सामाजिक ढांचों को स्वतः समाप्त नहीं करती। अंत में प्रत्यक्षदर्शी लेखन की ताकत, सीमाएं और सार्वजनिक बहस में उसकी भूमिका, यह पुस्तक अकादमिक इतिहास, सरकारी जांच रिपोर्ट या निष्पक्ष युद्ध अध्ययन होने का दावा नहीं करती। इसकी विधा प्रत्यक्षदर्शी राजनीतिक रिपोर्टाज है, जिसमें यात्रा, वृत्तांत, बातचीत, पृष्ठभूमि विश्लेषण और लेखक की निजी प्रतिक्रिया साथ चलती है। यही मिश्रण इसे प्रभावशाली बनाता है। रॉय पाठक को दंतेवाड़ा और जंगल के उस वातावरण तक ले जाती हैं जहां राज्य की संस्थाएं, भय, अफवाह, सैन्य उपस्थिति और विद्रोही संगठन रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। उनकी भाषा जटिल नीति प्रश्नों को नैतिक तात्कालिकता देती है, लेकिन इस शैली की सीमा भी उतनी ही स्पष्ट है। लेखक जिस दुनिया तक पहुंच पाती हैं, वही दृश्य प्रमुख हो जाता है, जबकि अन्य अनुभव, असहमति और तथ्यात्मक व्याख्याएं अपेक्षाकृत कम दिखाई दे सकती हैं। कुछ समीक्षकों ने पुस्तक को एकतरफा लेकिन अत्यंत आकर्षक और आंखें खोलने वाली रचना कहा है। इस आलोचना को पुस्तक की उपयोगिता घटाने के बजाय उसे पढ़ने की पद्धति बनाना चाहिए। पाठक को रॉय के दस्तावेजी अनुभवों को गंभीरता से लेना चाहिए, पर साथ में स्वतंत्र पत्रकारिता, मानवाधिकार रिपोर्टों, स्थानीय इतिहास और विभिन्न राजनीतिक दृष्टियों से तुलना भी करनी चाहिए। इस तरह पुस्तक अंतिम निर्णय नहीं, बल्कि उन प्रश्नों की ओर एक सशक्त प्रवेश द्वार बनती है, जिन्हें मुख्यधारा की बहस अक्सर सरल बना देती है। निष्कर्ष में वॉकिंग विद द कॉमरेड्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो भारत में नक्सली माओवादी संघर्ष, आदिवासी अधिकार, खनन, विस्थापन, मानवाधिकार और राज्य शक्ति के अंतर संबंध को समझना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान, पत्रकारिता, समाजशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन और समकालीन भारतीय लेखन के विद्यार्थियों को इससे एक प्रभावशाली प्राथमिक दृष्टिकोण मिल सकता है। सामान्य पाठक के लिए इसका लाभ यह है कि पुस्तक सुरक्षा और विकास जैसे परिचित शब्दों के पीछे मौजूद स्थानीय मानवीय कीमत पर ध्यान खींचती है। यह दिखाती है कि किसी संघर्ष को केवल आतंकवाद, केवल विकास विरोध या केवल क्रांति की भाषा में समेटना अपर्याप्त है। इसकी सबसे अलग विशेषता अरुंधति रॉय की दुर्लभ प्रत्यक्ष पहुंच है। वे जंगल में माओवादी साथियों के बीच जाकर उस पक्ष को दृश्य बनाती हैं जो अक्सर राज्य केंद्रित रिपोर्टिंग में अनुपस्थित रहता है। साथ ही पुस्तक की स्पष्ट राजनीतिक सहानुभूति पाठक से सक्रिय और आलोचनात्मक पठन की मांग करती है। इसे संतुलित संदर्भ के लिए अन्य विश्वसनीय स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए, विशेषकर माओवादी हिंसा, स्थानीय मतभेदों और सरकारी दावों के प्रश्नों पर। इसी तनाव में इसकी बौद्धिक कीमत है। समान विषय की अधिक औपचारिक पुस्तकों के विपरीत, यह नीति विश्लेषण को शरीर, भूगोल, भय और व्यक्तिगत साक्षात्कार के अनुभव से जोड़ती है। यह सहमति लेने के बजाय जटिल, असुविधाजनक और आवश्यक प्रश्न उठाने वाली पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अरुंधति रॉय, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।